प्रभुपाद। देव विष्णुकांत परमहंस परिव्राज कचार्य श्रोतक्षत श्री श्रीमद भय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी शिल प्रभुपाद की इस्कॉन बीबीडी फाउंडर आचार्य शिल प्रभुपाद की जय। ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राज कचार्य अष्टोत्तर शत श्रीमद भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर शिल प्रभुपाद की नामाचार्य शिल हरिदास ठाकुर की प्रेम से कहो जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्त वृंद की उपस्थित भक्त वृंद की जय। उपस्थित भक्त वृंद की जय। उपस्थित भक्त वृंद की जय। श्री श्री गुरु गौरांग की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया। भगवत्युत्तम श्लोके भक्तिर्भवती नैष्ठिकी। श्रीमद्भागवतम स्कंद एक अध्याय छह श्लोक क्रमांक 30। सहस्त्र युग पर्यन्ते उत्थाय इदं सिसृक्षतः मरीचिमिश्रा ऋषयः प्राणेभ्यः अहं च जगिरे। सहस्रयुगपर्यन्ते उद्यादें सिसृक्षतः मरीचिमिश्रा ऋषयः प्राणेभ्योऽहं च जगिरे। सहस्रयुगपर्यन्ते उद्यादें सिसृक्षतः मरीचिमिश्रा ऋषयः प्राणेभ्योऽहं च जगिरे। सहस्रयुगपर्यन्ते उद्यादिं सिसृक्षतः मरीचिमिश्रा ऋषयः प्राणेभ्योऽहं च जगिरे। सहस्र एक हजार युग 43 लाख वर्ष पर्यन्ते अवधि के अंत में उत्थाय बीतने पर इदम इस सिसृक्षतः पुनः सृजन करने की इच्छा प्रकट की। मरीचि मिश्राः, मरीचि जैसे ऋषि, ऋषयः सारे ऋषिगण, प्राणेभ्यः उनकी इंद्रियों से, अहम मैं च भी जगीरे प्रकट हुआ। अनुवाद और तात्पर्य इसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की इसको कैसे पढ़ते हैं, जो फिगर है हिंदी में, हिंदी है अगे। 1000 चतुर्युगों के बाद जब भगवान की इच्छा से ब्रह्मा पुनः सृष्टि करने के लिए जागे, तो मरीचि, अंगीरा, अत्री इत्यादि सारे ऋषि भगवान के दिव्य शरीर से उत्पन्न हुए और उन्हीं के साथ साथ मैं भी प्रकट हुआ। इसको जरूर लगा है। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद के द्वारा, ब्रह्मा के जीवन की एक दिन की अवधि 1000 चतुर्युग होती है। इसका उल्लेख भगवद गीता में किया गया है। अतः ब्रह्मा जी इस अवधि में अपने जनक गर्भोदक्षाय विष्णु के शरीर के भीतर योग निद्रा में शयन करते हैं। रात्रि होना चाहिए। इस निद्रा के बाद इस भगवान जब भगवान की इच्छा से ब्रह्मा के माध्यम द्वारा पुनः सृष्टि की जाती है, तो सारे ऋषि पुनः दिव्य शरीर के विभिन्न अंगों से प्रकट होते हैं और नारद भी इसी तरह प्रकट होते हैं। इसका अर्थ यह हुआ कि नारद उसी दिव्य शरीर में प्रकट होते हैं जिस प्रकार मनुष्य निद्रा के बाद उसी शरीर में जगता है। श्री नारद सर्वशक्तिमान के दिव्य तथा भौतिक सृष्टियों के सभी भागों में जाने के लिए मुक्त हैं। वे अपने दिव्य शरीर में ही प्रकट तथा अंतर्धान होते रहते हैं। यह शरीर बद्ध जीवों के शरीर से भिन्न है, क्योंकि इस शरीर तथा आत्मा में कोई भेद नहीं होता। ओम अज्ञान तिमिरांध्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देहं श्रीगुर श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातां सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादां सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानु सुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामीनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिने। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा। तो भागवत का ये प्रसंग चल रहा है कि नारद मुनि व्यास देव को ज्ञान दे रहे हैं और ज्ञान देते हुए वे अपनी कथा को कह रहे हैं, अपने पूर्व जन्म की कथा को कह रहे हैं, कैसे वे नारद बने। तो कभी कभी गुरु स्वयं ही या शिष्य के प्रश्न करने पर अपने जीवन की घटनाओं को दोहराते हैं। प्रभुपाद समझाते हैं कि क्या आवश्यकता थी नारद मुनि को व्यास देव को अपने जीवन के बारे में बताने की। क्या वो अपना गुणगान करवाना चाहते थे? क्या वो बताना चाहते थे कि मैं बहुत श्रेष्ठ हूं? नहीं, कारण ये था कि गुरु कभी कभी, श्रील प्रभुपाद इसको लिखते कि गुरु कभी कभी अपने जीवन की घटनाएं, अपने जीवन के विषय में शिष्यों को बताते हैं, जिससे शिष्यों को प्रेरणा मिल सके, वो भी जान सके, वो भी उस मार्ग पर चल सके जिस पर गुरु चले हैं और उन्हें कृष्ण की प्राप्ति हुई है। तो इसीलिए नारद मुनि ये अपने जीवन की कथा बता रहे हैं। हम लोग कथा को सुन चुके हैं, कैसे वो दासी पुत्र के रूप में, फिर उसके बाद तपस्या की और अब भगवान के दर्शन हुए, और फिर अब वो वर्णन कर रहे हैं कि कैसे कल्प का अंत हो गया। दिव्य शरीर की प्राप्ति उन्हें कल्प के अंत होने से पहले ही हो गई। पिछले श्लोकों में वर्णन है कि कैसे उनका शरीर दिव्य हो गया, और दिव्य शरीर होने के बाद अब उसी दिव्य शरीर में वे ब्रह्मा जी के साथ भगवान के शरीर में प्रवेश करते हैं, गर्भोदक्षाई विष्णु, जैसे यहां तात्पर्य में लिखा है कि अपने जनक गर्भोदक्षाई विष्णु। तो ब्रह्मा जी के जनक हैं गर्भोदक्षाई विष्णु, तो उनके शरीर में वो प्रवेश करते हैं। तो ये कब करते हैं? ब्रह्मा जी के दिन की जब समाप्ति होती है और ब्रह्मा जी फिर से जब उठते हैं, वर्णन किया कि वो फिर से सृष्टि प्रारंभ करते हैं। तो तीन प्रकार की सृष्टि होती है, एक कहते हैं महाकल्प, दूसरा विकल्प और तीसरा कल्प। ये तीन प्रकार की सृष्टियां होती हैं। वैसे पुराणों में, भागवत में इन तीन सृष्टियों को दो भागों में बांटा गया, सर्ग और विसर्ग। जैसे भागवत के विषय हैं अत्र सर्ग विसर्ग स्थानम पोषणम उत्तया, ऐसे 10 विषय उनके हैं, और यही 5 विषय जो पुराणों के होते हैं, सर्गश्च प्रतिसर्गश्च वंशो मनवंतराणि च वंशानुचरितम चैव पुराणम पंच लक्षणम। तो पुराणों के 5 लक्षण होते हैं, वहां भागवत महापुराण है इसीलिए 10 लक्षण है, लेकिन इन दोनों में सर्ग और विसर्ग ये आता है। तो सर्ग अर्थात प्रथम स्तर की सृष्टि और विसर्ग अर्थात द्वितीय स्तर की सृष्टि, और इसी को 3 सृष्टियों में बांटा गया है, महाकल्प, विकल्प और कल्प। तो महाकल्प वो होता है जहां महाविष्णु के स्तर पर सृष्टि होती है, 16 प्रकृति के जो तत्व हैं उनको प्रकट किया जाता है। अर्थात कहना चाहिए कि महाविष्णु एक बेस बनाकर दे देते हैं, एक आधार बनाकर दे देते हैं ब्रह्मा जी को कि अब आगे तुम सृष्टि करो, तो उसको महाकल्प कहते हैं, जहां महाविष्णु के स्तर पर सृष्टि होती है। दूसरा आता है विकल्प। विकल्प का अर्थ होता है कि जब महाविष्णु ने सृष्टि कर दी, तो फिर जब ब्रह्मा जी आगे सृष्टि करते हैं, महाविष्णु अलग अलग शरीर प्रकट नहीं करते जीवों के, महाविष्णु बहुत सारी सृष्टियां नहीं करते, ये सब ब्रह्मा जी करते हैं, तो उसको विकल्प कहते हैं। और तीसरे प्रकार की सृष्टि जो ब्रह्मा जी, जिसका यहाँ थोड़ा सा वर्णन हो रहा है, जो ब्रह्मा जी अपने दिन में करते हैं हर दिन, उसको कल्प कहते हैं, इसलिए ब्रह्मा जी के दिन को भी कल्प कहा जाता है। तो 30 दिन होते हैं ब्रह्मा जी के, तो उन्हें 30 कल्प कहते हैं। 30 दिन एक महीने में, ऐसे 12 महीने का एक साल, और ऐसे 100 साल का उनका जीवन है। इसीलिए महाकल्प, विकल्प और कल्प। तो कल्प क्या है? कल्प ये है कि ब्रह्मा जी जब सोकर उठते हैं, यहां वर्णन किया, नारद मुनि वर्णन कर रहे हैं कि रात्रि हुई ब्रह्मा जी की, और ब्रह्मा जी सभी जीवों को लेकर गर्भोदक्षाय विष्णु के शरीर में प्रवेश करते हैं। ये आंशिक प्रलय होता है। आंशिक प्रलय का अर्थ है महाप्रलय नहीं, पूरा प्रलय नहीं। ऊपर के लोक बने रहते हैं और केवल निचले लोक जलमग्न हो जाते हैं, और ब्रह्मा जी सभी जीवों को लेकर गर्भोदक्षाय विष्णु के शरीर में प्रवेश करते हैं और वहां पर रात्रि भर आराम करते हैं। ब्रह्मा जी के सोने का स्थान है। तो उस समय में जीवों की क्या स्थिति होती है, जैसे हम देख रहे हैं यहाँ पर प्रभुपाद वर्णन कर रहे हैं दिव्य शरीर और भौतिक शरीर, बद्ध जीवों के शरीर। प्रभुपाद लिख रहे हैं कि नारद मुनि का शरीर बद्ध जीवों के शरीर से भिन्न है। तो जब सारे जीव गर्भोदक्षाय विष्णु के शरीर में प्रवेश करते हैं तो किस रूप में करते हैं? नारद ने तो उसी रूप में किया क्योंकि उनका शरीर दिव्य था। लेकिन मान लीजिए कि कल्प खत्म होने से पहले, ब्रह्मा जी का खत्म होने से पहले कुछ लोग मनुष्य योनि में हैं, कुछ लोग कुछ जीव पशु योनि में हैं, कुछ जीव पक्षी योनि में हैं, तो वो सब कैसे जाते हैं? क्या वो लोग भी उन्हीं योनियों में जाते हैं? नहीं, वे अपने सूक्ष्म शरीर के साथ जाते हैं। तो ऐसा नहीं है कि सारे मनुष्य चले गए, सारे पशु चले गए और फिर जब आएंगे तब उनको, नहीं, वो सूक्ष्म शरीर में जाते हैं। और फिर जब अगले दिन होता है ब्रह्मा जी सोकर उठते हैं, आंख खुलती है ब्रह्मा जी की, और फिर ब्रह्मा जी सृष्टि करते हैं हर रोज। और ऐसे वर्णन है कि कभी कभी ब्रह्मा जी भूल जाते हैं पिछले दिन में जो सृष्टि की है, और इसलिए भगवान से फिर प्रार्थना करते हैं, भगवान याद दिलाते हैं। तो कभी कभी ब्रह्मा जी अपने दिन के प्रारंभ में ही कई कई वर्षों तक तपस्या करते हैं ताकि फिर से उनको याद आ सके कि क्या करना है, और फिर से सृष्टि प्रारंभ करते हैं। तो अब की बार जो सृष्टि करते हैं उसमें क्या करते हैं, पिछले दिन में जो कर्म किए थे इन जीवों ने, उनके आधार पर अगला जीवन उनको प्रदान करते हैं, शरीर एक प्रदान करते हैं। तो जीव है सूक्ष्म शरीर में है, लेकिन सूक्ष्म शरीर क्या है? कर्म का बंधन है। तो पिछले दिन में जो कर्म किए हैं उसके अनुसार अब उनको शरीर प्रदान किए जाते हैं। तो ये ब्रह्मा जी का कार्य है। तो ब्रह्मा जी फिर से, अब दिन शुरुआत होती है, देखते हैं क्या करना है, स्थानों को करते हैं। भागवत में जो विषय है प्रमुखता सृष्टि से संबंधित, वो है सर्ग विसर्ग स्थानम। स्थानम का अर्थ है 14 प्रमुख स्थान जीव के रहने के लिए और 84 लाख द्वितीय स्तर के स्थान। तो ये दोनों स्थान में आते हैं, अर्थात 14 लोग और 84 लाख योनियां। और ये ब्रह्मा जी निर्माण करते हैं कि किस तरह इन लोगों के जीवों को रहने का वो स्थान दें। तो रात्रि के समय, लेकिन जिनके दिव्य शरीर हैं जैसे नारद मुनि, उनका शरीर वैसे ही रहता है। तो प्रश्न आता है, क्या ब्रह्मा जी का दिव्य शरीर है? क्योंकि ब्रह्मा जी का शरीर भी वैसे ही रहता है रात्रि में, उनका वो सूक्ष्म शरीर में जाकर फिर से शरीर नहीं लेते। तो क्या ब्रह्मा जी का शरीर दिव्य है? नहीं, ब्रह्मा जी का भी शरीर दिव्य नहीं है क्योंकि वो भी बूढ़े होते हैं, वो भी मरते हैं। तो दिव्य शरीर का अर्थ है जहां मृत्यु नहीं होती। तो फिर ब्रह्मा जी के शरीर को कुछ क्यों नहीं होता ब्रह्मा जी की रात्रि में? क्योंकि वो ब्रह्मा जी की रात्रि है, वो तो केवल एक रात में सोना और उठने की बात है। हमारे लिए वो 1000 चतुर्युग है, ब्रह्मा जी के लिए नहीं है। समय का भेद होता है, इसीलिए कभी कभी हमें कुछ प्रश्न समझ नहीं आते हैं। जैसे किसी के मन में प्रश्न आता है कि हिरण्यकश्यपु अलग युग में था, रावण अलग युग में था, शिशुपाल अलग युग में थे। तो हिरण्यकश्यपु से रावण और रावण से शिशुपाल के बीच में वो कहां गए, कितने जन्म हो जाएंगे उसमें? तो वो कहां गए? वो कहीं गए नहीं, क्योंकि जब देवताओं के स्तर पर गणना की जाती है तो यहाँ के 1 युग 2 युग का कोई मूल्य नहीं है, तो बहुत जल्दी निकल जाता है। तो इस तरह ये ब्रह्मा जी फिर से उठकर सृष्टि करते हैं, फिर से जन्म देते हैं, और फिर चक्र शुरू हो जाता है जीवों का। ये जो महाकल्प, विकल्प और कल्प, इसको अगर बड़े सरल शब्दों में समझने का प्रयास किया जाए, या जैसे भगवद गीता में समझाया गया है कि बारंबार सृष्टि की रचना और बारंबार उसका संहार। जैसे हम लोग शरीर लेते हैं, फिर जन्म होता, मृत्यु होती है, फिर जन्म और फिर मृत्यु। तो सरल भाषा में महाकल्प, विकल्प और कल्प इतना ही है कि वो किस लिए होता है, जीव को शरीर मिलने के लिए, जीव को स्थान मिलने के लिए, ताकि इस भौतिक जगत में जीव को स्थान मिल सके। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम भूत्वा भूत्वा प्रलीयते। तो ये जगत क्या है, बारंबार इसका नाश होता है और बारंबार इसको बनाया जाता है, इसलिए जगत शाश्वत नहीं है। भौतिक प्रकृति शाश्वत है, लेकिन भौतिक जगत शाश्वत नहीं है। प्रकट होता है, अप्रकट हो जाता है, उसको बनाया जाता है और समाप्त किया जाता है। तो यहां ये सब होता है भगवान की इच्छा से। जय श्री श्री गौर नटराज दयालताय की जय। प्रभुपाद लिख रहे हैं कि भगवान की इच्छा से ब्रह्मा के द्वारा पुनः सृष्टि की जाती है, तो ये भी भगवान की इच्छा से होता है बारंबार। तो क्यों होता है, जीव को इतना क्यों कष्ट सहना पड़ता है, ये बारंबार क्यों प्रकृति के द्वारा हमें कष्ट दिया जाता है, एक ही बार शरीर दें और फिर भगवान के धाम चले जाएं। भूत्वा भूत्वा प्रलीयते, बारंबार बारंबार जगत का नाश होना, बारंबार उसका सृष्टि होने का अर्थ है कि इस जगत की अशाश्वतता को हमें समझाया जाता है। जीव को बारंबार अलग अलग प्रकार के शरीर देकर, यातना देकर, कष्ट देकर उसको समझाया जा रहा है कि क्यों कष्ट है। स्वाभाविक अवस्था में किसी को कष्ट नहीं होता, तो फिर कष्ट क्यों है, क्योंकि ये हमारी अस्वाभाविक अवस्था है। अस्वाभाविक अवस्था में जीव हमेशा कष्ट में रहता है, जैसे इस जगत में भी देखा जाता है। अगर कोई स्वाभाविक अवस्था में है, बीमार नहीं है, रुग्ण अवस्था में नहीं है, तो प्रसन्न रहता है, लेकिन जैसे ही रुग्ण अवस्था में जाता है वो प्रसन्न नहीं रह पाता। तो इसी तरह ये जो बारंबार शरीर लेना है, ये जीव की रुग्ण अवस्था है, जिसको यहां प्रभुपाद भेद कर रहे हैं नारद मुनि के शरीर से और बद्ध जीवों के। प्रभुपाद कहते हैं कि उनके आत्मा में और शरीर में कोई भेद नहीं होता। तो मुक्त अवस्था में जो शरीर हम ग्रहण करते हैं, या जो शरीर हमें प्राप्त होता है, या जिस शरीर को हम पुनः प्राप्त करते हैं, उसमें आत्मा और शरीर में भेद नहीं है, आत्मा ही शरीर है। इसको समझना चाहिए, प्रभुपाद इस चीज को समझा रहे हैं। शरीर और आत्मा में भेद हो गया तो फिर वो भौतिक हो गया। कभी कभी हम लोग इस बात को ऐसे समझते हैं कि जब हम भगवान के धाम जाएंगे तो हमें एक आध्यात्मिक शरीर दिया जाएगा। नहीं, अगर और एक शरीर दिया गया तो फिर आत्मा और शरीर में भेद हो गया। लेकिन प्रभुपाद यहां लिखते हैं कि आत्मा और शरीर में कोई भेद नहीं होता, मतलब आत्मा ही शरीर का रूप लेती है आध्यात्मिक जगत में, और उसे मुक्ति कहा गया है। मुक्तिर हित्वन्यथा रूपम स्वरूपेण व्यवस्थिति ही, मतलब मुक्ति का अर्थ है जितने भी अलग अलग रूप हम लोग ले रहे हैं उनको त्याग कर स्वरूपेण व्यवस्थिति, अपने स्वरूप में स्थित होना। तो वहां ये नहीं कहा गया है कि एक अन्य शरीर को लेना, अपने स्वरूप में स्थित होना, मतलब आत्मा को ही शरीर के रूप में स्थापित करना, जहां भेद ना हो आत्मा और शरीर में। और इसको प्राप्त करने के लिए क्या करना चाहिए, इसको प्राप्त करने के लिए भगवान हमें भक्ति का मार्ग देते हैं, क्योंकि एक ही मार्ग है जिसके द्वारा, जैसे भगवान भगवद गीता में कहते हैं भक्ति त्वनन्य या भक्ति त्वनन्य या शक्य, संभव ही नहीं है बिना भक्ति के जानना अहमेव विदोर्जुना। तो फिर कैसे, भक्ति के बिना अगर कृष्ण को नहीं जान सकते तो आध्यात्मिक जगत कैसे जाएंगे। भक्तिया माम भी जाना थी, भगवान कहते केवल भक्ति से मुझे जान जा सकता। तो जब ये दो प्रकार के शरीरों को, एक शरीर को छोड़कर दूसरे को प्राप्त करना है, भक्ति ही एक मार्ग है। और इस भक्ति में तीन अवस्थाएं होती हैं। पहली अवस्था नियमों का कड़ाई से पालन, वैदिक भक्ति। दूसरी अवस्था स्थायित्व का आना, स्थिरता का आना।
और तीसरी अवस्था भाव प्रकट होना। तो ये भक्ति के तीन क्रमिक विकास हैं। जीव को नियमों का पालन करना, स्थाई समय का आना और फिर भावों का प्रकट होना। और इन तीनों स्तरों पर, एक स्तर से दूसरे स्तर, दूसरे स्तर से, ये विकास है, क्रमिक विकास। तो इसको पाने के लिए क्या करना चाहिए, कैसे जीवन जीना चाहिए? तो पहला स्तर जो है वो तपस्या का स्तर है, जहां हम कड़ाई से नियमों का पालन करते हैं, कड़ाई से तपस्या करते हैं। तो तपस्या का स्तर है पहला, जहां हम बड़ी गंभीरता से नियमों का पालन करते हैं, इसको वैदिक भक्ति कहते हैं, पहला स्तर क्रम का। तो तपस्या करें और विद्या ग्रहण करें। तो तपस्या जितनी व्यक्ति करता है, उस तपस्या के द्वारा उसके जीवन में जितनी भी आसक्तियां हैं वो कम होना प्रारंभ होती हैं। ये आसक्तियां हैं जो हमें कृष्ण की ओर जाने से रोकती हैं, इसीलिए तपस्या चाहिए। तो तपस्या चाहिए, विद्या चाहिए, योग चाहिए, ध्यान चाहिए भगवान की ओर जाने में, और इंद्रिय संयम चाहिए। तो जब हम इन चीजों को करते हैं, तपस्या करते हैं, जिसके द्वारा श्री कृष्ण की ओर जाने का मार्ग सशक्त होता है, विद्या ग्रहण करते हैं, जब तक तपस्या नहीं है विद्या प्रवेश नहीं करती, सही विद्या। बिना तपस्या की जो विद्या ली जाती है बाहरी जगत में, वो विद्या नहीं, अविद्या है। तो अविद्या बिना तपस्या के मिल सकती है कभी कभी, उसके लिए भी तपस्या करनी पड़ती है, पढ़ाई करना पड़ता है, कॉलेज जाना पड़ता है, डिग्री लेना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि वो भी ऐसे ही मिल जाती है, लेकिन फिर भी वो तपस्या नहीं करनी पड़ती जो भक्ति के ज्ञान के लिए। जब तक तपस्या नहीं करेंगे, ज्ञान प्रवेश नहीं करता हृदय में। तो इसीलिए यह कहना चाहिए कि ज्ञान विज्ञान नहीं बनता, विद्या नहीं बनता, वो अविद्या ही रहता है। तो तपस्या करना जीवन में, और फिर विद्या को सही दृष्टि में समझना है, अर्थात ज्ञान को विद्या बनाना, और फिर उसके आधार पर योग, योग अर्थात भगवान से जुड़ना। तो योग मतलब केवल कोई शारीरिक कसरत नहीं है, योग का अर्थ है भगवान से जुड़ना। श्रील प्रभुपाद योग शब्द की परिभाषा करते हैं कि भक्ति के माध्यम से भगवान से जुड़ने की प्रक्रिया योग कहलाती है। टू लिंक विद द सुप्रीम इन डिवोशनल सर्विस इज कॉल्ड योगा। तो इसीलिए हमें उस योग का पालन करना होता है। तपस्या हुई, विद्या आ गई, तो विद्या आएगी तो अब हम विद्या का उद्देश्य क्या है, कृष्ण से जुड़ना। विद्या का कोई दूसरा उद्देश्य नहीं होता, ये जानना चाहिए। विद्या धन कमाने के लिए नहीं है, विद्या मान प्रतिष्ठा के लिए नहीं है, विद्या इस जगत की कुछ चीजें बनाने के लिए नहीं है, विद्या इस जगत में ये चीजें कैसे चल रही है केवल उतना जानने के लिए नहीं है। विद्या का अर्थ है कृष्ण को जानने का प्रयास करना, अन्यथा विद्या व्यर्थ है। तो तपस्या हुई, विद्या हुई, योग हुआ, और फिर इसके बाद हम लोग ध्यान करते हैं। ध्यान अर्थात पूर्ण ध्यान, बड़ा गहन ध्यान। वैसे तो वैदिक भक्ति के प्रारंभ में ही या प्रारंभ से ध्यान होता है, लेकिन जब विद्या ज्ञान और भगवान से जुड़ने की तीव्र भावना को लेकर जो ध्यान किया जाता है वो प्रायः समाधि होता है, और उसके द्वारा हम इस भौतिक शरीर का नाश कर सकते हैं। भौतिक शरीर को जब समाप्त किया जाता है तो एक, कुछ लोग मान लीजिए कि आत्महत्या करते हैं, तो ये भी भौतिक शरीर को समाप्त करना है। तो क्या उससे भौतिक शरीर समाप्त हो गया? नहीं, भौतिक शरीर नहीं, हमें भौतिक अस्तित्व को समाप्त करना है, वो महत्वपूर्ण है। सत्ता को सिद्ध करना है। सत्ता मतलब इस जगत में हमारा भौतिक अस्तित्व, उसको कह सत्ता, हमारे सत्ता, अशुद्ध सत्ता। और शुद्ध सत्ता मतलब आध्यात्मिक अस्तित्व। तो भौतिक अस्तित्व को कैसे समाप्त कर सकते हैं? इन चीजों के द्वारा, भक्ति के द्वारा। लेकिन भक्ति किस भाव में करें? अपने भौतिक शरीर को आध्यात्मिक शरीर, दिव्य शरीर में कैसे बदलें? भक्ति किस भाव में करें? सबसे पहला भक्ति का उद्देश्य होता है कि भक्ति किसी भौतिक लाभ के लिए नहीं करनी चाहिए। जिस दिन हम लोग भक्ति भौतिक लाभ के लिए, जब तक हम लोग भक्ति भौतिक लाभ के लिए करते हैं, भूतवा भूतवा प्रलीयते, शरीर बदलते रहेंगे। तो भक्ति भौतिक लाभ के लिए हम लोग ना करें, क्योंकि ये जो शरीर है ये केवल कष्ट देता है, तकलीफें देता है, और हम बहुत आसक्त रहते हैं इस शरीर से। हमें शरीर से आसक्ति छोड़नी है। तो अगर भक्ति करनी है बिना भौतिक लाभ के, इसका अर्थ है शरीर से आसक्ति छोड़ना। जब तक शरीर से आसक्ति है, भौतिक लाभ की कामना बनी रहेगी, कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत इधर उधर कि मुझे ये प्राप्त हो जाए, मुझे वो प्राप्त हो जाए, कुछ नहीं तो मान सम्मान ही मिल जाए, कुछ नहीं तो सुविधा मिल जाए, मैं इस शरीर का भोग कर लूं, स्त्री संग कर लूं, कुछ धन इकट्ठा कर लूं, कहीं ना कहीं ये भावना बनी रहेगी। वैरागियों को भी जब धन मिलता है, अगर उनको अनासक्ति नहीं है तो उन्हें बड़ा अच्छा लगता है, अरे इतना धन आ गया, उनको लगता है बहुत अच्छी बात, जानते नहीं कि धन उनका है नहीं, वैरागी है। तो धन भी, आसक्ति ही एक बहुत बड़ी बाधा है शरीर से आसक्ति हमें कृष्ण की ओर ले जाने में, रोकने में, या भक्ति को बिना भौतिक लाभ के करने। तो शरीर से अनासक्त कैसे होना चाहिए? शरीर से अनासक्त होने के लिए मार्ग है क्रमिक विकास। पहला श्रद्धा, श्रद्धा उत्पन्न करें भक्तों में, भगवान में, शास्त्र में। अगर हमें शरीर से अनासक्त होना है, शरीर से आसक्त रहेंगे, भरे पड़े रहेंगे शरीर में, तो कभी हो नहीं पाए। श्रद्धा उत्पन्न करें, श्रद्धा उत्पन्न हो गई तो फिर अगला मार्ग है जिज्ञासा। हम शरीर से आसक्त क्यों हैं, ये जिज्ञासा कीजिए। क्या है ऐसा, अर्जुन ने जिज्ञासा की कृष्ण से, कि व्यक्ति इतना पाप क्यों करता है? विवेकी पुरुष है, ज्ञान है, सब जानता है, लेकिन फिर भी पाप करता है। परीक्षित महाराज ने भी यही किया, जानन अपि आत्मनो अहितम, जानता है कि अब मेरे लिए अहित है, फिर भी पाप करता है। पापम चरति पुरुषः, तो क्यों पाप करता है? क्यों करता है? क्योंकि उसने श्रद्धा उत्पन्न करके जिज्ञासा नहीं की। क्या जिज्ञासा नहीं की? कि मेरे जीवन का लक्ष्य क्या है, मैं हूं कौन। और ये जिज्ञासा बहुत जरूरी है। तो शरीर से आसक्त होने के लिए पहले श्रद्धा हो हृदय में। जब तक श्रद्धा नहीं, हम विश्वास नहीं करेंगे आपको जो भक्त बता रहे हैं, जो शास्त्र बता रहे हैं, प्रभुपाद बता रहे हैं। और फिर हम दूसरा स्तर आता है कि हम जिज्ञासा करें, क्या है ये। प्रभुपाद कहते हैं कि वैसे भी इस जगत में हम सब जिज्ञासा करते हैं। पक्षी सुबह सुबह उठकर जिज्ञासा शुरू कर देते हैं, खाने के लिए कहाँ है। हर जीव जिज्ञासा कर रहा है, लेकिन कौन सी जिज्ञासा होनी चाहिए? अथातो ब्रह्म जिज्ञासा। हमारा जो शरीर है वो काम भोग के लिए नहीं है। कामस्य नेन्द्रिय प्रीति, ये जो शरीर है काम के लिए नहीं है। फिर किसके लिए है? हमें जिज्ञासा करने के लिए। कामस्य नेन्द्रिय प्रीति नार्थो कर, हाँ, या वो जीवे तो या लभ, उसके आगे क्या है, नेक्स्ट, जीवस्य तत्व जिज्ञासा। तो जिज्ञासा करनी चाहिए, नार्थ अर्थाय उपकल्पते। तो जीवस्य तत्व जिज्ञासा, अर्थात श्रद्धा हो गई है तो आप जिज्ञासा ये ना करें कि स्वामी जी हम कैसे प्रसन्न रहेंगे, हमारा घर सुखी कैसे रहेगा। तो बहुत कर ली जिज्ञासा, अभी जीवस्य तत्व जिज्ञासा, उस जिज्ञासा को करें। तो ये दूसरा स्तर है शरीर से अनासक्ति, क्रमिक विकास। आपने श्रद्धा हो गई आपके हृदय में, अब आप जिज्ञासा कीजिए, और जिज्ञासा करके तीसरा क्रम क्या आता है विकास में, शरीर से अनासक्त होने का। आपने श्रद्धा हो गई, आपने जिज्ञासा कर ली और आपको उत्तर मिल गया ये करना है, तो तीसरा स्तर है जहां हम उसको अपने जीवन में अपनाते हैं, उन शिक्षाओं को, उन उपदेशों को, उन निर्देशों को जो हमें जिज्ञासा से मिले हैं। हमने जिज्ञासा की कौन हूं मैं, क्या कर्तव्य है मेरा, और फिर आचार्य गणों ने, गुरुजनों ने, शिक्षकों ने आपको उत्तर दे दिया। अब जीवन में अपनाना, अर्थात उस उत्तर के आधार पर, उस जिज्ञासा के आधार पर अपने जीवन को जीने का प्रयास करना। फिर ये नहीं सोचना कि नहीं ये सब तो अभी हमारे लिए नहीं, अगले जन्म में देखेंगे। नहीं, अगला जन्म नहीं लेना है, प्रण लेना चाहिए। क्यों लेना है अगला जन्म? क्या है ऐसा इस भौतिक जगत में, क्या है ऐसा इस जन्म में जो हम बारंबार लेना चाहते हैं? कभी कभी लोगों को ये प्रश्न किया जाता है, बड़े बड़े लोग, अगर आपका, आपको फिर से चॉइस दी जाए जन्म के लिए, तो आप क्या बनना चाहेंगे, क्या आप फिर से यही शरीर लेना चाहेंगे क्या? तो बहुत से लोग बोलते हैं कि हाँ यही, क्यों, उनको बहुत कुछ उस समय भौतिक भोग में आनंद आ रहा है, शायद उनको उतना कष्ट नहीं हुआ शरीर का अभी, शायद उन्होंने अभी देखे नहीं है इस भौतिक जगत के कष्ट को, या अनुभव कर कर भी आंखें बंद कर रहे हैं खरगोश की तरह। इसीलिए इस शरीर में, इस भौतिक जगत में क्या है ऐसा जो हम वापस आना चाहते हैं? हार्ड मास का ये पिंड, बदबू से भरा हुआ ये शरीर, थैला खोलिए इसको, केवल बदबू आती है, बेहोश हो जाएंगे देखकर अपने ही शरीर को खुला हुआ, जिसको हम बड़े प्रेम से संभाल कर रखे हुए, खोल लीजिए इसको, देखिए अंदर क्या है, कुछ नहीं। तो इसलिए आना ही नहीं। तो तीसरा स्तर है क्रमिक विकास में, जहां हम उसको जीवन में अपनाने का प्रयास करते हैं, और उसके लिए बहुत कड़ाई से तीन चीजों का पालन करते हैं। तो जब हम जीवन में उन उपदेशों को, निर्देशों को अपनाने का प्रयास कर रहे हैं, तो तीन चीजों का कड़ाई से पालन आवश्यक है। पहला है ऐसे सभी संघ को त्यागना जो इन उपदेशों के विरुद्ध है। तो पहला चीज हमें करना चाहिए, जब तक उसमें बने हैं खींचता रहेगा कोई ना कोई, हमारी आसक्ति, हमारी आशंका, हमारी शंकाएं इस मार्ग के प्रति बनी रहेंगी। तो पहली चीज ऐसे सारे संघ को त्यागना, और दूसरा आचार्यों के मार्ग पर कड़ाई से चलने का पालन करना। हम जो चीजों को जीवन में उतार रहे हैं तो हमेशा आचार्यों के आदर को करना, परंपरा में रहना, कहीं इधर उधर ना जाना। अर्थात एक है कि असत संग त्यागना, दूसरा है पथभ्रष्ट ना होना, और तीसरा है अनिंदया, निंदा नहीं करना। ये तीन चीजें हमें मदद करती हैं भक्ति में प्राप्त हुए निर्देशों को जीवन में उतारने के लिए। हम असत संग ना करें, आचार्यों का बहुत आदर करें, और तीसरी चीज कि हम अनिंदया, निंदा छोड़ दें। क्योंकि जब तक व्यक्ति निंदा करता रहता है तब तक उसका हृदय भरा रहता है भौतिक इच्छा। निंदा शून्य, इसीलिए कहा गया है कि किनकी सेवा करनी चाहिए, उच्च स्तर के भक्त कौन है, निंदा शून्य, निंदा करना बिल्कुल बंद कर दिया है। तो इस तरह से हमें प्रयास करना चाहिए, और जब हम ये करते हैं, जब हम श्रद्धा उत्पन्न करते हैं, जिज्ञासा करते हैं, अपने जीवन में उन निर्देशों को अपनाने का प्रयास करते हैं, इन तीन चीजों को करते हुए, अर्थात असत संग त्याग कर, आचार्यों को आदर करके, और अनिंदया स्तर पर रहकर, तब क्या स्थिति आती है, द्वंद तितिक्षया। द्वंद तितिक्षया मतलब तब हम द्वंद्वों को सहन करने के लिए तैयार हो जाते हैं, तब हमें द्वंद प्रभावित नहीं करते। द्वंद क्या है इस जगत के, सर्दी गर्मी, हार विजय, मान अपमान, इसे द्वंद है। तो वो स्तर है जहां हम द्वंद्व तितिक्षया फिर बहुत आराम से सहन कर लेते हैं। सहनशीलता द्वंद्वों की होनी चाहिए, वेगों की होनी चाहिए। वेग सहनशीलता, द्वंद्व सहनशीलता, परोत्कर्ष सहनशीलता, परमत्त सहनशीलता, तो ऐसे कई सहनशीलताएं हम लोग उत्पन्न करते हैं, प्रमुखतः द्वंद्व। तो वेगों को सहन करना सीख लेते हैं, द्वंद्वों को सहन करना सीख लेते हैं। आज प्रश्न मन में आता है, हम इतने समय से भक्ति कर रहे हैं, अभी भी द्वंद्वों को क्यों नहीं सहन कर पाए, वेगों को क्यों नहीं सहन कर पा रहे हैं? कारण इतना ही कि हमने उन तीन चीजों को गंभीरता से नहीं किया, असत्संग नहीं त्यागा, आचार्यों के महत्व को नहीं समझा और अनिंदया स्तर पर नहीं आए। श्रद्धा है, जिज्ञासा भी कर ली, प्रयास करें जीवन में उन चीजों को उतारने का। तो इसीलिए जो सहनशीलता है तितिक्षया, उसको हमें उत्पन्न करना आवश्यक है और तब जाकर हम भगवान को प्राप्त कर पाते हैं। क्योंकि जो व्यक्ति फिर जिसके हृदय में वो भाव आ जाता है, वो भक्ति आ जाती है, वो क्या करता है, वो अन्यों को बताता है, वो रख नहीं पाता अपने आप में। श्रील प्रभुपाद जब उन भावों को रख नहीं पाए, इसीलिए दुनिया भर में दिया उन्होंने जाकर वृद्धावस्था में भी। और ऐसा भक्त शरीर से दूर हो सकता है, शरीर की भावना से, ज्ञान के द्वारा। और तब जो भक्ति हम करते हैं अनासक्त भाव में, वो भक्ति हमें हमारे भौतिक और आध्य भौतिक शरीर से आध्यात्मिक शरीर तक पहुंचने में मदद करती है। तो इसीलिए जो तीन अवस्थाएं हैं भक्ति की, वैधी अवस्था या क्रमिक विकास की अवस्था, स्थाई और भाव, तो हमें वैधी भक्ति में बड़ी कड़ाई से पालन करना चाहिए चीजों का, जिसके द्वारा हम अपने जीवन में उस तपस्या, उस योग के पालन को कर सकें जो हमारे लिए बहुत आवश्यक है। और तब हम, जैसे यहां नारद मुनि का वर्णन किया गया कि नारद मुनि सर्वशक्ति नारद सर्वशक्तिमान की दिव्य तथा भौतिक सृष्टियों के सभी भागों में जाने के लिए मुक्त हैं। तो तब हम मुक्त अवस्था में पहुंचेंगे और सभी सृष्टियों में जाने का अर्थ कई हो सकते हैं। सभी सृष्टियों में जाने का अर्थ जो यहाँ प्रभुपाद समझा रहे हैं कि भगवान की भौतिक आध्यात्मिक वैकुंठ में जा सकते हैं, नारद मुनि कहीं भी जा सकते हैं, ये एक अर्थ है। दूसरा अर्थ, भगवान की सृष्टियों की सभी सृष्टियों में जाना, मतलब भगवान ने जितने भी प्रकार की सृष्टियां की हैं उनके महत्व को समझना और उसके द्वारा भगवान का गुणगान करना, ये भगवान की सृष्टियों में प्रवेश करने का एक और अर्थ है। भगवान ने कई प्रकार की सृष्टियां की हैं, लेकिन उन सब सृष्टियों को समझते हुए भगवान का गुणगान करना, ये हम सर्वशक्तिमान का हम मुक्त हो जाएंगे तो उस समय में ये हम गुणगान भगवान का कर सकेंगे। और अंत में प्रभुपाद तात्पर्य में कहते हैं कि ये शरीर, बद्ध जीवों के शरीर, इस शरीर और आत्मा में कोई भेद नहीं है। तो ये हमारे लिए लक्ष्य है कि हम ऐसे शरीर को प्राप्त करें जिसमें कोई बाधा ना हो। किसमें बाधा ना हो? ऐसा नहीं है कि ये शरीर जन्म मृत्यु जरा व्याधि के लिए कष्ट दे रहा है, मैं कष्ट से दूर जाना चाहता हूं। नहीं, भक्त चाहता है कि मुझे ऐसा शरीर प्राप्त हो जिसमें कृष्ण की सेवा में कोई बाधा ना हो। तो इसलिए ऐसे शरीर की प्राप्ति क्यों भक्त प्राप्ति करना चाहता है? कभी कभी मन में आ सकता है, महाप्रभु ने तो कहा ना, धनम न जन्म न सुंदरीम कविताम वा जगदीश काम ये मम जन्मनी जन्मनीश्वरे। कहां उन्होंने कहा कि मुझे मुक्ति चाहिए? कहां उन्होंने कहा कि मुझे दिव्य शरीर चाहिए? तो दिव्य शरीर की कामना क्यों करते हैं भक्त? भगवान की सेवा सतत कर सके। आज सेवा करना चाहते हैं, शरीर साथ नहीं देता, कोई बीमारी हो जाती है तो शरीर नहीं साथ देता, नहीं कर पाते। वृद्धावस्था आती है, नहीं कर पाते, मन नहीं करने देता। अगर वृद्धावस्था नहीं है, बीमारी नहीं है, तो मन है। युवावस्था में मन नहीं करने देता, तो देखिए ये हमारी स्थिति है। बाल्यावस्था में ज्ञान नहीं है भक्ति का, युवावस्था में मन भक्ति करने नहीं देता और वृद्धावस्था में शरीर भक्ति नहीं करने देता। करें कब भक्ति? तो इसीलिए दिव्य शरीर की प्राप्ति कि जहां ना बाल्यावस्था हो अबोध अवस्था, जहां ना युवावस्था हो इस जगत की युवावस्था जिसमें मन बड़ा विचलित रहे, और ना ही वृद्धावस्था हो कष्ट देने वाली, एक ही स्थिति हो और एक ही सेवा हो और उसको हम हृदय से हर रोज कर सकें, हर क्षण कर सकें, ये मुक्ति है, सच्ची मुक्ति। और उसका वर्णन यहां प्रभुपाद कर रहे हैं। तो जब तक वो स्थिति प्राप्त नहीं होती, ब्रह्मा जी के दिन के अंत में गर्भोदक्षाई के शरीर में जाना और फिर उनके शरीर से बाहर आना, भूतवा भूतवा प्रलीयते। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा। कोई प्रश्न है? नारद नारद एक नारद हैं जिनके विस्तार हर ब्रह्मांड में होते हैं, तो हर ब्रह्मांड में अलग अलग नारद मुनि हैं ये विस्तार के रूप में। लेकिन जब वो आध्यात्मिक जगत का वर्णन आता है तो वो एक नारद मुनि पहुंचते हैं, तो वही विस्तारित हर ब्रह्मांड में, क्योंकि हर ब्रह्मांड में हर समय लीला चल रही है। ऐसा नहीं कि एक ब्रह्मांड का टाइम खत्म हो तब नारद मुनि उधर जाएंगे इत्यादि। तो नारद मुनि हर ब्रह्मांड में है और आध्यात्मिक जगत में भी है। इसका वर्णन एक पुराण में किया गया है कि नारद मुनि आध्यात्मिक जगत में भी हैं और उसी समय भौतिक जगत में भी है। तो ये इसीलिए वो विस्तारित रूप में हर ब्रह्मांड में रहते हैं। राइट। एक सौ आठ में उन्होंने कर लिया। यस, भागवत में उसका वर्णन है ना कि उन्होंने भी आवश्यकता पड़ने पर, साधारणतः भक्त नहीं करते, मतलब जैसे कृष्ण करते ही रहते हैं तो भक्त नॉर्मल अपने में, लेकिन जब आवश्यकता पड़ती है तो फिर सेवा हेतु वो कितने भी विस्तार कर सकते हैं वो योगी, क्योंकि वो भौतिक कुछ योग साधना से उस चीज को प्राप्त करते हैं। इसीलिए मैक्सिमम नौ में कर्दम मुनि ने किया अपने आपको, तो प्रभुपाद समझाते हैं कि वो ज्यादा से ज्यादा नौ में कर सकते, लेकिन भगवान असंख्य। और भगवान के जो शुद्ध भक्त हैं जिन्होंने उस अवस्था को प्राप्त कर लिया विशुद्ध सत्व को, वो भी कर सकते हैं विस्तार, और ये नारद मुनि के उदाहरण से हम लोग सीखते हैं। हाँ, उसमें डेफिनेटली उनका इंटेलिजेंस से बना है, लेकिन स्थूल पार्ट भी है, केवल सूक्ष्म पार्ट नहीं है। जैसे हमारा शरीर में मैक्सिमम स्थूल पार्ट है और सूक्ष्म भी, तो बस ये भेद है। जैसे अगर हमारा शरीर देखें तो हमारा ये सूक्ष्म है और जैसे जैसे हम प्रकट हो स्थूल हो जाता है, ब्रह्मा जी का स्थूल और जैसे जैसे वो सूक्ष्म हो जाता है, मतलब प्रमुखता प्रधानता। जैसे हम कहते हैं फायर बैक्टीरिया, तो फायर बैक्टीरिया में प्रधानता किसकी है? अग्नि की। हमारे शरीर में प्रधानता किसकी है? पृथ्वी की। इसलिए सारा जो दिख रहा है ये दिख सकता है। फायर बैक्टीरिया उसमें फायर की ज्यादा है, जल में जल की ज्यादा है, जिसके कारण वो बड़ी आसानी से बहता। और इसी तरह ब्रह्मा जी के शरीर में बुद्धि का एलिमेंट ज्यादा है, इंटेलिजेंस का, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं कि बाकी उनके में कोई एलिमेंट्स नहीं, बाकी भी हैं लेकिन उनकी मात्रा बहुत कम। सो हर एक स्थान पर जो जो रहते हैं उस स्थान के आधार पर आठ एलिमेंट में से किसी एक की मात्रा ज्यादा होती है और बाकी थोड़े मात्रा में रहते हैं। जैसे हमारे अंदर अग्नि भी है, जल भी है, ऐसा नहीं कि बाकी नहीं, लेकिन प्रधानता मानी जाती है पृथ्वी की। यस यस। Yes. दोनों एक ही है, साधना और भाव के बीच की अवस्था को स्थायित्व कहा जाता है। वैसे भक्तियों के प्रमुखता दो ही भाग हैं, साधना भक्ति और भाव भक्ति, दो ही भाग हैं, और भाव भक्ति का फल है प्रेम भक्ति। तो वो जो स्तर है वो फल माना गया है भक्तियां, क्योंकि इस दोनों में हमें अभ्यास करना है। भाव भक्ति के स्तर पर अभ्यास होता है, प्रेम भक्ति वो मतलब समझ लीजिए कि जैसे ये दो प्रैक्टिस के हैं और वो एक्चुअल एप्लीकेशन, प्रैक्टिकल एप्लीकेशन, पढ़ाई करना और फिर कार्य करना। जैसे व्यक्ति इंजीनियर बनता है तो इंजीनियर बनने का स्तर क्या है, साधना और भाव भक्ति, लेकिन जब वो एक्चुअल मशीन ठीक करने लगा वो प्रेम भक्ति। तो इसलिए है दो ही भाव, साधना और भाव, साधना के विभाग हैं वैदिक भक्ति, वैदिक साधना भक्ति, रागनों का साधना भक्ति, और दो ही भाग है। तो दूसरी है भाव भक्ति, लेकिन जब ये जो क्रमिक विकास कहा जाता है तो फिर भाव भक्ति और साधना भक्ति के बीच में स्थायित्व आता है, जहां आप तैयार हो रहे हैं भाव के लिए। और भाव भक्ति और प्रेम भक्ति के बीच में भी स्थान है। अगर आप भक्ति रसामृत सिंधु पढ़ेंगे तो कई अवस्थाएं दी गई, इवन प्रेम की कई अवस्थाएं दी गई। तो ये जो स्थायित्व भाव है ये बहुत आवश्यक है भाव तक पहुंचने के लिए। तो ये बीच की अवस्था, इसलिए उसको कहा जाता है कि क्रमिक विकास है, ये प्रभुपाद इसको समझाते हैं। और ये निश्चित आवश्यक है, लेकिन प्रमुखतः दो ही भक्तियां हम लोग समझाते हैं, साधना भक्ति और भाव भक्ति। रागानुगा हाँ, ये जहां तक वैदी भक्ति है वो अनर्थ निवृत्ति तक हमारे, उसको वैदी भक्ति कहा जाता है। फिर जो उसके बाद से शुरू होती रुचि आ सकती, ये स्तर फिर रागनुगा के स्तर से, क्योंकि जब तक अनर्थ निवृत्ति नहीं है तब तक फिर कड़ाई से, बड़ी कड़ाई से नियम का पालन, वैदिक भक्ति का पालन होता है, मतलब शास्त्र का। जैसे तीसरा स्तर है साधु संघ और फिर भजन क्रिया। तो भजन क्रिया क्या है, वो वैदिक भक्ति, लेकिन भजन क्रिया का फल क्या होना चाहिए, अनर्थ निवृत्ति, और फिर उसके बाद रागनुगा। क्यों, क्योंकि रागनुगा का अर्थ क्या है, जो रागात्मिका भक्त हैं उनके पथ पर चलना। तो कब चलेंगे, जब तक हमें आसक्ति नहीं होगी, हमें रुचि बड़ी गहरी नहीं होगी, तो उस स्तर पर फिर ये रागनुगा भक्ति आ जाती है, और फिर आगे भाव और प्रेम। तो ये अनर्थ निवृत्ति के बाद से, और इसका वर्णन भक्ति विनोद ठाकुर करते हैं। वो कहते हैं कि जब तक अनर्थ निवृत्ति नहीं होती व्यक्ति ब्रज भक्ति में प्रवेश नहीं करता। तो ब्रज भक्ति का अर्थ क्या है, रागनुगा, भगवान के किसी रागात्मिका भक्त के चरण चिन्ह पर चलना। तो इसको भक्ति विनोद ठाकुर समझाते कि अनर्थ निवृत्ति के बाद ये स्तर आता है। इस्कॉन के कॉन्टेक्स्ट में ऐसा है, क्योंकि अभी हम लोग बड़ी प्रारंभिक अवस्था में भक्ति प्रारंभ करते हैं, वैदिक भक्ति इत्यादि, और ये जो स्तर आता है जहाँ व्यक्ति रागात्मिका भक्त को पालन करना है, वो किसी के कहने से नहीं होता, ये स्वतः स्वरित होता है, क्योंकि वो स्तर स्पॉन्टेनियस डिवोशन का है, स्पॉन्टेनियस। तो वो स्तर में किसी को कहा नहीं जाता कि आप ये हैं, आप इनको फॉलो कीजिए, आप उनको फॉलो, व्यक्ति का भाव डेवलप हो जाता है। तो जब हम अनर्थ निवृत्ति तक आते हैं, आते आते एक स्वाभाविकता, हमारा जो रस है वो प्रकट होता है, थोड़े स्तर से, पूरे नहीं, प्रकट होना शुरू हो जाता है कि हम, आपका रस साख्य में है, वात्सल्य में है, किस में है। तो वो स्वाभाविकता प्रकट होना, तब तक प्रकट नहीं होता है जब तक अनर्थ निवृत्ति नहीं होती, और फिर उस समय पर ये स्वतः उसकी ओर ज्यादा बढ़ते हैं। तो इसलिए कोई बताया नहीं, गुरु आपको नहीं बताते कि ठीक है अब आप इनको पालन कीजिए, लेकिन वो स्वतः होता है। और फिर उस स्तर से भक्त अपने आप आसक्त हो जाता है उस, इस एक प्रकार के, मान लीजिए कोई यशोदा मैया से हो गया, कोई नंद महाराज से हो गया, कोई ग्वाल बालों से हो गया, उनको ये लगता है कि वो भाव बढ़ जाता है कि नहीं मुझे इसमें, हाँ ठीक है ये कृष्ण की लीला है, ये कृष्ण मुझे आनंद इस ज्यादा लीला में आता है। लेकिन वो कैसे आता है, शुरुआत में भी ऐसा होता है, हमें शुरुआत में भी कभी कभी लगता है नहीं मुझे ग्वाल वालों की लीला है, मुझे गोपियों की लीला है ज्यादा, वो स्तर नहीं है, वो उसको नहीं मानना चाहिए कि ये अब भाव बढ़ रहा है, क्योंकि अभी तक हमारी शुद्धिकरण नहीं हुआ। तो वो आता है अनर्थ निवृत्ति के बाद, और इसलिए उसको कोई बताता नहीं है, वो स्वतः प्रकट होता है। तो इस्कॉन के कॉन्टेक्स्ट में भी गुरु एक केवल आपको सुविधा प्रदान करते हैं भक्ति के लिए, दूसरा भक्ति के मार्ग की जो बाधाएं हैं उनको वो हर लेते हैं। जैसे कर्म, जब दीक्षा के समय गुरु कर्म लेते हैं तो कौन से कर्म लेते हैं, सारे नहीं ले लेते, अगर सारे ले ले तो हम लोग तो फिर दीक्षा हुई नहीं, माला मिली नहीं कि सीधा ऊपर, कर्म खत्म हो गए तो इस जगत में रहने के लाभ ही क्या है, या कौन रहना चाहेगा। तो गुरु उन कर्मों को ले लेते हैं जो भक्ति में बाधा है, अर्थात गुरु का प्रमुख कार्य है ऐसी सुविधाओं को प्रकट कराना और गाइड करना, ट्रेन करना डिसाइपल्स को, जिसके द्वारा वो उस स्तर तक पहुंच सके। पहुंचना डिसाइपल का काम, तो गुरु नहीं करते। कोई प्रश्न है? नहीं। धुरंधराज श्रीमद्भागवतम की जय, श्री प्रभुपाद की जय, निताय गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल।